जल भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 25 जुलाई 20 को 20 का दिन आप सब के लिए मंगल में हो। मैं चाहूंगी कि आप भगवत चिंतन में अपना समय अधिक से अधिक दें। संसारिक चिंतन को एक ओर करते हुए आप ये समझे, आप जानते भी हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। द एम ऑफ लाइफ टू सी द गॉड। बट डिफिकल्टी क्या है कि परमहंस जी लिखते हैं कि वेरी फ्यू पीपल नो दैट द एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गॉड। ये एक बहुत बड़ा हमारे रास्ते में एक रुकावट है कि उद्देश्य तो है भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन हम चल पड़ते हैं संसार के प्रपंच की ओर। तो कैसे हटे उससे, कैसे हम अपना रास्ता मोड़े, कैसे हम भगवान की ओर अपना मन लगाएं, इसके लिए हमने काफी आपको श्रीमाला जी के प्रसंग सुनाए हैं, जिसमें हमें रास्ते भी बताए गए हैं कि मन को कैसे मोड़ा जाता है, मन की शुद्धि कैसे होती है और भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को संदेह हो तो आप सोमलता जी से बात करके प्रश्न रख सकते हैं। तो आज मैं राजेंद्र सूद, जो अभी रिटायर्ड हैं और उन्होंने जो कुछ अपने विचार लिखे हैं, कुछ उन्होंने हिंदी में और कुछ उन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो हिंदी का मैं पहले लिखती हूँ। मैं राजेंद्र सूद आपको शायद वाणी के विषय में हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा जन्म कुल्लू सिटी के एक छोटे से गांव रायसन में हुआ। रायसन में मिडिल स्कूल तक की शिक्षा का प्रबंध था। जब मैं 9th क्लास में हुआ तो मुझे गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना था, तो उसमें मेरे निहाल में मुझे आना हुआ। वो ऐसा हुआ कि उन दिनों 63 में श्री मां जी, जिन्हें उसमें गीता बहन जी के नाम से पुकारा जाता था, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापिका थी और वह 9वीं 10वीं और 11वीं को इंग्लिश भी पढ़ाती थी तथा हिस्ट्री में। तो मेरे माता जी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप राजू को कुल्लू भेज दो। मैं जब कुल्लू आया तो गीता बहन जी ने, श्री माँ जी ने मुझे 9वीं क्लास में दाखिला दे दिया। उन दिनों गीता बहन जी के पास 9वीं 10वीं 11वीं का एडमिशन एंड विड्रावल रजिस्टर था। मैंने देखा कि वह एडमिशन भी करते हैं और जब कोई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के जाते हैं या कक्षा में पास होते हैं तो मेरी बड़ा सा रजिस्टर निकाल के बैठे रहती हैं और सबको सर्टिफिकेट देती हैं। और पढ़ाने में भी उन्हें बड़ी रुचि थी, वो बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, जो भी उनके सब्जेक्ट थे वो बड़े प्यार से पढ़ाती थी। मेरा भी सौभाग्य था कि मैंने 9वीं 10वीं 11वीं उनके साथ रहकर स्कूल में भी घर में भी बड़े अच्छे नंबरों में परीक्षा पास की। तत्पश्चात में अगली एजुकेशन के लिए स्कूल छोड़कर बाहर चला गया। अब माता जी से कैसे मिलना हो, ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों वैष्णो देवी के बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है आज पूरे देश में भी और विश्व में भी, वे एक फकीर कुल्लू में आए थे। मैंने उनके दर्शन किए, मैं अपने माता जी के साथ रायसन से मंदिर गया तो मैंने बाबा जी को देखा। मुझे लगा ये बाबा जी कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई भिक्षुक नहीं है, ये कोई भिखारी भी नहीं है, ये क्या है क्या, ये एक महान योगी है, ये एक महान तपस्वी है, ये एक महापुरुष है जो इस धरा पर कुछ देने के लिए ही आया है। ये मेरे मन में एक स्फूर्णा पैदा हुई थी। फिर मैं कभी कभी जाता था, दिल्ली जाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अचानक मुझे पता लगा कि 1974 में मेरे माता जी ने बताया कि गीता बहन जी अथवा मेरी मौसी स्कूल घर बार सब छोड़कर अचानक वैष्णो देवी चली गई हैं, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके वहाँ सेवा करनी शुरू कर दी है। तो मेरे मन में आया कि चलो देखो मासी जी को, वो इतना अच्छा काम या स्कूल में करती थी, फेमस थी, छात्र भी बहुत प्यार करते थे, और जेबीटी में मैंने सुना था जब वो जेबीटी में पढ़ाती थी तो सुरेशों को बहुत पसंद करते थे। ये हुआ क्या, अचानक उनके मन में चेंज कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे आया, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। तो मैं गया तो पहले तो मुझे सीढ़ियां चढ़कर श्री महाराज जी के दर्शन हुए, मैंने उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे आगे जाकर के माता जी अथवा मौसी जी दिखाई दी भगवान साड़ी में, तो मैंने उन्हें भी प्रणाम किया, उनको देखकर मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे अपने आप ही मिल गया, मुझे उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं हुई, मैंने देख लिया कि वो तो एक अलग से रास्ते पर जाने के लिए संसार में आई हुई है। इसी प्रकार मैं कभी जाता कभी आता, हमारा स्मरण इसी प्रकार बना रहा। 1983 में मेरे माता जी ने कहा कि राजू वैष्णो देवी के बाबा जी और तेरी मासी मतलब गीता माँ जी और बहुत से भक्त कन्याकुमारी की यात्रा पे जा रहे हैं, राजू मुझे भी जाना है। उस समय तक राजू के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, मतलब मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था। जब माता जी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना मैं माता जी की इच्छा को पूरा कर दूं। उन दिनों गवर्नमेंट की तरफ से LTC मिलता था, मैंने दो टिकटों का LTC बनवाया और मंदिर जाके अपना नाम लिखवा दिया। तो मुझे श्री महाराज जी के साथ 1983 में एक महीना इकट्ठे रहने का सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ। कुल्लू से कन्याकुमारी तक की यात्रा मेरे लिए एक अलौकिक यात्रा है जिसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने उस यात्रा में देखा कि मैं तो डिवाइन सोल के साथ घूम रहा हूँ। ये क्या बात है, ये कैसी बात है, ऐसा मेरे मन में कई बार आता लेकिन फिर मैं चुप कर चुप रह जाता। पूरी यात्रा मैंने देखी किस प्रकार माता जी एक स्टोव और कुछ सामान लेकर के बस में चली गई थी, और जहाँ पर हम ठहरते हम तो होटल में खाना खा लेते, लेकिन श्री महाराज जी के लिए माता जी से हम अपने हाथों से कुछ डोसा या चपाती आदि बनाती थी जो वह अचार के साथ ही खा लेते थे। और केवल मैं देखता था कि महाराज जी तो एक चपाती पूरी भी नहीं खाते, लेकिन जब वो चलते थे यात्रा में कहीं हमें पैदल जाना होता था तो वो सबसे आगे आगे चलते हैं। और फिर हम जब कन्याकुमारी से पहले हम मैसूर पहुंचे, रात को हम मैसूर है तो प्रातः मैं तो अभी अपने कमरे में ही था कि उधर क्या कर रहा था, पेमेंट कर रहा था शायद होटल की, और सभी बस में बैठे और ड्राइवर ने बस चला दिया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा हमारी हिमाचल टूरिज्म की बस तो है नहीं, तो कहाँ चली गई, मैं बड़ा घबराया, बस तो चली गई शायद उन्होंने फोन था या नहीं था ख्याल नहीं मुझे आ रहा है, तो मैं खड़ा का खड़ा रह गया। फिर मेरे मन में आया अच्छा तो मैं एक रिक्शा करके थ्री व्हीलर करके मैं बस का पीछा करूं, क्योंकि मैंने पूछा रूट तो किसी सज्जन ने मुझे होटल वाले ने रूट बता दिया इसी रास्ते से गाड़ी गई है, तो मैं रिक्शा में बैठ गया और उधर स्वामी जी को भी ख्याल आ गया उन्होंने कहा राजू कहाँ, तो हमने जब उन्होंने जब राजू कहाँ है कहा तो मेरे माता जी ने भी देखा, राजू तो है नहीं बस में, वो सब ने देखा और मासी जी ने भी देखा, तो महाराज जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा चलो बस वापस ले चलो ड्राइवर को। रेसिन का एक युवक गीतराम जी हमारे ड्राइवर थे, वो होते उन्होंने वापस बस मोड़ी। इधर से मैं जा रहा था, रास्ते में आधे रास्ते शायद बस 14 किलोमीटर आगे चली जा चुकी थी और मैं 7 किलोमीटर पहुंचा और वो बस भी आ गई और हमारा मेल हो गया। मैंने 3 महीने वाले को पेमेंट की और बस में चढ़ा और चढ़ जैसे ही चढ़ा वैसे स्वामी जी एकदम से मुझे गले लगा लिया। कहने लगे राजू आज क्या हो गया था, आपको चाहिए ही आना था। हम तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो मैंने देखा इतना प्रेम, इतना प्रेम हूँ देता है, कहाँ से ये प्रेम होता है। हम लोग दुनियावी लोग तो ये स्वदेश में फंसे रहते हैं। इस तरह से मैंने उनके साथ जो यात्रा की उसमें मुझे बहुत आनंद मिला। कन्याकुमारी पहुँच कर मैंने देखा कि जहाँ 3 समुद्र हिंद महासागर, खाड़ी बंगाल, अरब सागर आपस में मिलते हैं, वहाँ महाराज जी खड़े हो गए एकदम से सीधे खड़े। उसमें उनकी एज 87 ईयर्स ओल्ड थी, क्योंकि जैसे कि मुझे पता लगा कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, तो इस हिसाब से 84 मिलकर उनकी आयु 87 ईयर्स तो थी ही। इस तरह से मैंने देखा कि इतने बूढ़ा आदमी कितनी फुर्ती से चलते हैं और कैसे सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जब वो तीनों समुद्रों के संगम पर खड़े थे कन्याकुमारी पर पत्थर पर, जो शायद फोटो भी है उनका चित्र भी है, तो मुझे लगा वाह ये तो पक्के देशभक्त हैं, ये तो अपने भारत माँ की बड़े प्यार से निहारे हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत एक है। फिर वहां से स्वामी विवेकानंद जी की रोड पर गए, रोड पर जैसे हम सुंदर पार करके रोड पर पहुंचे तो श्री महाराज जी सबसे आगे लाठी लिए हुए नंगे पांव फटाफट रास्ता क्रॉस करके चट्टान पर पहुंचे गए, रोड पर पहुंचे गए। वहां पर एक चट्टान पर चरण कमल खुदे हुए हैं, ये मान्यता है कि वो कन्याकुमारी के चरण हैं। तो कुमारी कन्या आती थी भगवान शिव जी के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए, उनको वर के रूप में पाने के लिए, तो उन्हीं के ये चरण है। श्री महाराज जी ने वहाँ खड़े होकर उनको प्रणाम किया चरणों को, हमने भी उनको देखकर श्री चरणों में प्रणाम किया। फिर हम आगे बढ़े महाराज जी का पीछा करते हुए, फिर हम विवेकानंद उस भवन में गए जहाँ पर विवेकानंद जी की कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई है। तो वहाँ महाराज जी एक एक खड़े हो गए और कहने लगे लाठी का इशारा करके विवेकानंद की ओर इशारा करके कहते हैं लो बाबा ने आपके सामने माँ को लाके खड़ा कर दिया है। मैं पीछे खड़ा था और मैंने ये जब विवेकानंद जी के साथ उनकी ये वार्ता सुनी तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा वाह महाराज जी तो सुपर नेचुरल है, ये देखो ये तो मूर्ति से भी बात करते हैं, वो कितने प्यार से उन्होंने मूर्ति से बात की। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ करके हम ध्यान के अंदर मिले, विवेकानंद ऊपर एक ध्यान केंद्र है, वहाँ पर जाकर महाराज जी ने कहा बैठो सभी बैठो यहाँ ध्यान लगाओ, और से हम खड़े हुए। हमने 5 मिनट ध्यान लगाया फिर हम बाहर आ गए, महाराज जी के साथ हम वापस कन्याकुमारी आ गए और फिर हमने कन्याकुमारी से हम रामेश्वरम गए। वहाँ भी इस प्रकार के अलौकिक कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिली, किस प्रकार श्री महाराज जी ने शिवलिंग की पूजा की और जितने भी पुजारी थे उन सब ने महाराज जी का कोई अलौकिक रूप देखा और सभी नतमस्तक हुए थे। इस प्रकार मुझे शिव महाराज जी के साथ यात्रा करने का, माता जी के साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ दत्त नाम का एक आईटीबीपी का जवान भी था, जो मेरा दोस्त था। सब जगह से घूम घाम करके महाराज जी को दत्त ने कहा, महाराज जी मेरे गांव भी चलिए। जब हम दिल्ली पहुंचे तो महाराज जी ने सेवकों में यस करवा ली कि हाँ चलेंगे चलेंगे। फिर हमारी बस दिल्ली से गांव की ओर गई, तो गांव में चालीसा देख कर मुझे हरियाणा का गांव शायद देखने का पहला ही मेरा अवसर था, और महाराज जी का वहाँ पर रहना और गांव वालों को इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना, ये देखकर मैं और भी ज्यादा प्रसन्नचित हुआ। तो महाराज जी का प्रति मेरी दिन दुगनी रात चौगनी श्रद्धा तो भी बढ़ गई। इस प्रकार मुझे महाराज जी के साथ रहने का काफी सौभाग्य मिला। तत्पश्चात मेरी शादी हुई तो मैं अपने धर्म पत्नी के साथ श्री महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया। उन्होंने मेरे सिर पर तथा मेरी पत्नी के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। उसमें भी वे कुछ भावुक से हो गए थे। और इटी साहब ने जब उन्होंने समाधि ले ली तो मुझे और ज्यादा दुख तो हुआ ही, लेकिन एक चिंता भी मेरी बढ़ गई कि महाराज जी चले गए और मंदिर कैसे चलेगा। तब मैंने साक्षात देखा कि श्री महाराज जी की आत्मा, उनकी शक्ति, उनके सुपरनैचुरल पावर जो है वो अभी भी मंदिर में काम कर रही है। मैं अभी भी कभी कभी वहाँ जाता हूँ मंदिर में, और मंदिर का मैं सदस्य हूँ, और विशेष करके मैं मैगजीन को मंदिर की तरफ से जो आप लोगों ने संग मैगजीन चलाई है उसके लिए तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और उसी के विषय में अब कुछ लिखना चाहूंगा। तो इट इज एन इमेंस प्लेजर दैट आवर फेवरेट मैगजीन शरद वाणी इज ब्रिंगिंग आउट इट्स फिफ्थ एडिशन। द थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय गीता मांझी, द चेयरपर्सन महादेवी तीर्थ कुल्लू, published almost over 2 decades. Now, as to the mind being the sole determinator of success and failure, the need for this cessation of the mind from the body, the need being natural to all the worldly pleasure and phenomena, but sincere and devoted to all human actions in all their entirety in the world, which is a place of uncertainty, how to achieve peace of mind by being self-disciplined and impervious, and above all, the need to strive for the love and compassion for and well-being of the mankind are all but assimilation and emulation in their totally simultaneously. The thoughts and views expressed by the editor, the co-editors, as well as the authors of various articles published from time to time too, are quite knowledgeable and educative. Thoughts precede action and means precede goals. So our thoughts and means must be as pure and honest as we want our actions and goals to be. मैं थोड़ा समय रुकती हूँ कि राजेंद्र क्या लिखते हैं कि ये गोल को अचीव करने के लिए सो अवर थॉट्स, इसलिए हमारे विचार और हमारे साधन मीन्स मतलब साधन जिससे हमको भगवान की प्राप्ति करनी है मस्ट बी एज प्योर, बहुत ही प्योर होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, एंड ऑनेस्ट एज और साथ ही ईमानदारी से होने चाहिए। जैसा कि हम ये कार्य भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, only when we can create love and compassion for the mankind, and this is what our religion is to be, karma yogi. to sustain the usefulness and the popularity of this unique magazine, it will be the worthwhile to make a readable and illustrative as far as possible. The hard work and the sincere efforts put in by all the concerned in bringing out the magazine in various forms time to time have made this beautiful magazine but it is today for which they deserve all the praise. I wish them all good luck and best wishes and a grand success to the forthcoming 5th edition of the Sharad Bani. Rajendra Sood. So, अब मैं आपको ये कहूँगी कि इस प्रकार भक्तों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और आपके विचार भी अब मैं आगे सुनाने जा रही हूँ और अभी मैं एक दो छोटे छोटे विचार सुनाती हूँ। अच्छा, नीतन एंड विनीता सूद थॉमस कट्टेमान, heartiest congratulations to Shri Manji and to all the members of Shadama Seva Sangh for the success 50th edition of Sharad Bani Best Dishes. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने इस कार्य को यही पूर्ण विराम देती हूँ। गीता माँ जय माता दी।